نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، تاکہ کیونکہ جو فرائض ہیں ان کی پوچھ ہے، اور خاص طور پہ جو پلرز آف اسلام ہے نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پلرز ہیں. دیکھیے، فرائض تو دوسرے بھی ہیں، لیکن اگر پلرز ہمارے کمزور ہوں گے یا پلرز ہوں گے ہی نہیں، تو ہماری اسلام کی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے نا بلڈنگ. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ روزے کے بارے میں اور نمازوں میں سے جو سب سے مشکل چیز ہے نا، وہ ہے نماز کے اندر خشوع کا پیدا کرنا. قد افلح المؤمنون میں ہم نے کیا پڑھا تھا، 18واں پارہ شروع ہی ہوتا ہے تو نماز میں خشوع کی بات آتی ہے. خشوع کیا چیز ہے؟ یعنی دل کی حاضری ہونا، اس کے اندر آپ کے دل کی توجہ ہونا، آپ کی جو زبان کہہ رہی ہے اس کے ساتھ دل بھی ٹیلی کر رہا ہو، ٹھیک ہے. اور نماز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس میں خشوع کتنا ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں خیالات اور وسواس نہ لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں خیالات اور وسواس نہ لائے، تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آپ نے سنا نا کہ شرط کیا ہے، پہلے گناہ کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ نماز میں آپ کے خیالات اور وسواس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو وسوسوں کا آنا تو ایک نیچرل بات ہو سکتی ہے کہ انسان کے ذہن میں وسوسہ آ جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک شیطان اسی کام کے لیے لگا ہوا ہے کہ وہ اذان کے وقت بھاگ جاتا ہے، جب وہ جوں ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، پھر جب اقامہ دی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اقامہ دینا ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور اسپیشلی نماز کے اندر آ کے ستاتا ہے، خیالات لے کر آتا ہے. تو ایک ہے خیالات کا خود بخود آ جانا، اب وہ ان کے اندر آپ نے بار 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 اپنا ذہن واپس لے کر آنا ہے، لیکن ایک ہے خیالات کا لانا کہ آپ نے اللہ اکبر کیا اور ساتھ ہی کچھ سوچنا شروع کر دیا. تو دیکھیں، نماز جو ہے نا آپ کے گناہوں کی بخشش کب بنے گی؟ گناہ کی بخشش کا مطلب کیا؟ نماز اصل میں صلات ہے نا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے روٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جلا دینا. کس کو جلاتی ہے یہ؟ گناہوں کو. ان کا کفارہ بن جاتی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہر نماز میرے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن گئی؟ تو یہ تلوار کی طرح ہیں، سمجھ لیں. آپ بچوں کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اے ہم کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے ان کو کہیں دیکھو تمہیں سوٹ سے کھیلنے کا شوق ہے، نینجا اور ان کا اس کا وہ شوق ہے، تو یہ دیکھو یہ نماز ہے نا، یہ بھی تمہاری یہی ہے، سوڈ ہے، اس سے تم اپنے گناہوں کو ختم کرو. تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرے گناہ دھلنے لگے ہیں، اب میں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے جا رہی ہوں، اور اگر اس میں وسوسے آئیں گے، خیالات میں لاؤں گی، تو گناہ نہیں دھلیں گے. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی مثال آتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو خشوع کی وجہ سے ایسے لگتا تھا جیسے لکڑی کھڑی ہوئی ہے. خشوع آپ کے بدن سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا، اور آپ کا دل بھی، تو اس طرح سے لگتا تھا کہ لکڑی کیسے کھڑی ہوتی، سٹل بالکل نا، کوئی حرکت نہیں ہے اس میں، اور آپ سجدہ کرتے تو چڑیاں آپ کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی، یعنی اتنا اس کا مطلب لمبا سجدہ ہوتا تھا، اور اتنے سٹل ہوتے تھے کہ چڑیاں سمجھتی تھی کہ ایک بے جان سی چیز پڑی ہوئی. سبحان اللہ. تو اسی طرح حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. آپ سے پوچھا گیا کہ وضو کی وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ तो आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैं किसके सामने खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ? यानी इंसान के वजू से ही उसकी कैफियत बदल जानी चाहिए। तो ये हमने करना है कि जब हम वजू के लिए ही जा रहे हैं ना, तो उस वक़्त ही हो हा, और वो बातें इधर उधर, और वो फलाने तुम ऐसे, और वो उसके ये नहीं, और कभी बच्चों को डांट डपट हो रही है, कभी बातें भी हो रही हैं, और साथ वजू भी किया जा रहा है, और हंसी मजाक भी हो रहा है, तो उसी वक़्त से आपने सीरियस हो जाना है। क्योंकि आपने ये इस वजह से कि मैं किससे मुलाकात के लिए जा रही हूँ, आपको फिक्रमंद कर देते ना, अगर आपको किसी से, किसी बड़े आदमी के साथ मुलाकात करनी है, तो आप घर से ही कांपना शुरू जाते हैं कि बस बहुत मेरी नर्वसनेस हो रही है, और बहुत मुझे ये हो रहा है क्योंकि फलां से मिलने के लिए जा रहे हैं, सब ठीक रहे और सब ये रहे, और एंग्जाइटी सी आपको होने लगती है। तो देखिए, अल्लाह ताला से आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो इसका ख्याल नमाज में तो रहना है, लेकिन वजू में ही शुरू हो जाए। क्योंकि अगर वजू के वक्त नहीं शुरू होगा ना, तो जब नमाज के लिए भी खड़े होंगे तो आपके ऊपर सीरियसनेस नहीं आएगी। तो वजू के वक्त से ही आपने ये सोचना शुरू कर देना कि मैं अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ताला से बातें करने जा रही हूँ। तो ये चीज़, यानी अगर आप उस वक़्त से अपने ऊपर तारीक करते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। तो नमाज की जो रूह है ना, स्पिरिट है, वो खुशू है और दिल का हाज़िर होना। जिस चीज़ में देखें, अगर रूह नहीं होती, जान नहीं होती, जान किसी चीज़ में से निकल जाए तो क्या होता है, उस बॉडी की क्या कदर कीमत होती है जिसमें रूह ना हो। सोचिए ना आप ज़रा, अगर आप एक जिस्म को देखें, एक डेड बॉडी है, तो वो किसी काम की है? किसी काम की नहीं। घर वाले भी उसको लेके तो मट्टी में दबा आते हैं, क्योंकि अब वो किसी के भी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो जो नमाज बगैर रूह के है, वो भी बेकार नमाज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी कयामत के दिन। क्या उसके नामा आमाल में कोई वजन होगा? खुद बताएं, उसकी कोई वेट होगा? उसका क्या अजर मिलेगा? कि आपने रूह के तो निकाल लिया, सिर्फ आपकी फिजिकल जो उसकी प्रेजेंस है, वो तो डेड बॉडी की भी फिजिकल प्रेजेंस होती है, आप क्यों नहीं उसको घर में रख लेते? हाँ, क्योंकि आपको पता ही, आप कोई काम की नहीं रही। तो नमाज में दो हाजिरियाँ, एक तो आपने जिस्म को तो हाजिर करना ही है, जिस्म को तो ठीक है, आपने मारे बांधे का उठा के मुसल्ले पे खड़ा कर ही लिया, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो आपकी अटेंडेंस है ना, वो आपके दिल की अटेंडेंस है, दिल की हाजिरी है। दिल भी प्रेजेंट है या नहीं? जब हमारी अटेंडेंस ली जाती है, हम मुंह से तो बोलते हैं प्रेजेंट, तो क्या जिस्मानी तौर पे तो हमने कह दिया कि हम प्रेजेंट हैं? दिल का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। मसलन आप क्लास में अगर आते हैं, आप क्लास में तो बैठे हुए, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, टीचर ने सारा लेक्चर दे दिया, आप कुछ और ही सोचते रहे, क्या उस क्लास लेने का कोई फ़ायदा होगा? क्या आप कुछ सीखेंगे? क्या कोई बात आपके अमल में आएगी? नहीं, आपने तो कुछ सुना ही नहीं, आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट थे ना। तो अगर आप अपना, यानी नमाज में तो देखें दिल का हाजिर होना, इसके बगैर नमाज का पर्पस ही सॉल्व नहीं होता। अगर नमाज के अंदर दिल ही हाजिर नहीं है, दिल प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर सिर्फ नमाज की शेप रह जाएगी, फॉर्म रह जाएगी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। समझ आई बात की? आप उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो बैठा है और वो अपनी सोचों में गुम है, या फिर वो बैठा हुआ और उसने वो कानों पे वो हेडफोन लगाए हुए और वो अपना कुछ और सुनने लगा हुआ, और वो कह रहा है प्रेजेंट मैं हूँ तो सही। आप उसको क्या वैल्यू देंगे? क्या उसको अपनी क्लास में कोई आप अहमियत देंगे? नहीं देंगे। आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा, ये उतारो पहले कानों से। तो अल्लाह ताला को जो चीज़ पहुँचती है ना, वो आपकी हरकतें नहीं पहुंचती कि मैं रुकू में जा रही हूँ, सजदे में जा रही हूँ, क़याम में करी, बल्कि वो कैफियत, जो वो जो जो वो स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपका दिल है, वो पहुंचता है। वो कहाँ है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी नमाज कैसी है और हमारी नमाज का क्या अजर मिलेगा। तो सारी नमाज में नहीं भी, अभी हम इंशाअल्लाह ताला इस वक्त से, इंशाअल्लाह अभी से हम एक तो सबसे पहले ये समझ जाएं बात को, मान लें कि हमारी नमाजें बीमार नमाजें हैं, इनको हमने सही करना है। ठीक है, हमारी नमाजें ख़राब नमाजें हैं, इनको हमने, इनकी हालत को बेहतर करना है। ठीक है, कोई बीमार हो जाए, कितनी फिक्र होती है कि अल्लाह इसको सेहत दे दे। हमारी नमाजें बीमार हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मेरी नमाजों को ठीक कर दे। एक तो पहले ये इतराफ़ करें, दूसरा अब हमने ना क्या करना है कि फ़राइज़ से शुरू करना है। फ़र्ज़ जो है ना उसमें पहले खुशू लेकर आना है, ठीक है। अब पूरी नमाज में से सबसे ज़्यादा आपका फोकस इस पे हो कि मेरे फ़र्ज़ में मेरा दिमाग कहीं ना जाए, और फ़र्ज़ में भी आप उसको डिवाइड कर लें कि मेरी हर रकत सही होनी चाहिए। एवरी रकत, हर रकत के ऊपर जब डिवाइड कर करके करेंगे ना, अच्छा एक रकत हो गई पूरी आपकी, आप रुकू से सजदे में चले गए, एक रकत आपने पूरी पढ़ ली, अब दिल में ये इरादा होना चाहिए कि दूसरी रकत भी बगैर ख्यालात के मैंने पढ़नी है और दिल को हाजिर करके पढ़नी, दूसरी रकत भी पढ़ें इसी तरह, फिर तीसरी भी पढ़ें, चौथी भी पढ़ें, इस तरह तो डिवाइड कर लें 4 रकत में। उसके बाद सलाम फिरने के बाद एवरी रकत को आप 10 मार्क्स रख लें, ठीक है। फिर देखें कि मुझे आज कितने नंबर मिले हैं मेरी फ़र्ज़ नमाज में। अगर एक रकत में भी ख्यालात आए, अगर आधी रकत में ख्याल आए और आधी में नहीं आए तो 5 नंबर दें खुद को। अगर पूरी रकत में ख्यालात रहे और रकत को आप कहाँ से गिने, शुरू से लेके फातिहा से लेके सज्दे तक उसमें गिन लें, ठीक है। अगर आधी के अंदर ख्यालात नहीं आए 5 नंबर दे रहे हैं, और अगर पूरी में नहीं आए 10 नंबर दें। इस तरह से करके अपनी नमाजों को मार्क्स दें, ज़रा हमें खुद तो पता चले यहाँ पे ही दुनिया में कि हमारी कितनी मार्किंग हो रही है। हाँ तो इससे ज़रा फिक्र भी होगी कि क्या है वैल्यू है मेरी नमाज की, और मैं इम्प्रूव कर रही हूँ या नहीं। और इंशाल्लाह आपको फिर जब जैसे जैसे आपकी नमाज अच्छी होती जाएगी ना, आपको खुशी होगी कि अल्लाह मेरी नमाज अच्छी हो रही है, आपको एक बहुत गुड फीलिंग होगी दिल में ना, तो ये शुरू करें। और अगर नमाज के शुरू में दिल हाजिर है तो कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के अंदर तो हाजिर करें ना, शुरू जब हाजिर करके आप करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ओवरनाइट में भी नहीं आए लेकिन पहले तो इस चीज़ को जाने तो सही ना। तो एक तो ये करें कि अपनी नमाज को अहम समझें। लेकिन जितना आप अपनी नमाज को अहमियत देंगे ना, उतनी ज़्यादा नमाज की तरफ आपकी तवज्जो होगी। जैसे आपको कोई भी अहम काम होता है तो सारा दिन आप उसका सोचते हैं, बल्कि एक दिन पहले से ही। मिसाल के तौर पे आपने कहीं कल शादी पे जाना, तो क्या होता है, एक दिन पहले से सोचती रहती है, अच्छा किस टाइम पे जाना है, अच्छा क्या पहनूंगी, अच्छा किस वक्त पहुंचना है, अच्छा वो कब आ रहे हैं, और ये आप कितना सारा कुछ सोच के रखती है ना। तो नमाज तो इतना अहम काम है, इसकी फिक्र करनी है, यानी इसको अहम समझना है। अहम होगी तभी आपका दिल भी मुतवज्जो होगा। तो इंसान की नमाज डिपेंड में, जो नमाज में हाजिरी है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर आखरत की कितनी अहमियत है, हमारे अंदर आखरत का कितना ईमान है। क्योंकि जब इंसान का दिल हाजिर नहीं होता तो इसका मतलब यही है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये किसी भी किसी ज़बरदस्ती से, किसी आर्टिफिशियल तरीके से, आप बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे, किताबों के अंदर लिखे होंगे कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तब अभी मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन अगर फिर भी दिल की हाज़िरी नहीं हो रही तो ईमान कमज़ोर है, अल्लाह की पहचान नहीं है, उसकी मोहब्बत नहीं है, या उसके साथ कनेक्शन नहीं है, इसीलिए दिल नहीं हाजिर हो रहा और आप ऊपर ऊपर की बस कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। तो और जैसे आप बहुत दफ़ा आपने सुना भी होगा, मैं भी वही बात दोहराऊंगी कि जो बोल रहे हैं उसका माना समझे, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जिस वक्त कि आपका दिल हाजिर हो। और लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप सही अल्फाज भी अदा कर रहे होते हैं, दिल भी हाजिर होता है, लेकिन माने पे आपकी तवज्जो नहीं होती। तो माने पे तवज्जो करनी है, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं ना और जो आप सोच रहे हैं वो एक ही होना चाहिए। अगर जुबान कुछ बोल रही है और आप कुछ और बोल रहे हैं तो ये फिर आप अंदर ही अंदर दिल ही दिल में कुछ और बातें करते जा रहे हैं, तो फिर आपका दिल इसका मतलब हाजिर नहीं है, ये फिर दिल की हाजिरी ना हुई, ठीक है। तो उसको फिर आपने चेक करना है। और थोड़ा सा मुझे तो इसमें फिर आपको ये करना है कि नमाज की तरफ ध्यान में ये है कि माने पे भी ध्यान देना है। तो इसकी वजह से फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करने से जब आप माने की तरफ आपका सारा जहन होगा ना, जहन फोकस्ड होगा एक चीज की तरफ, तो इंशाल्लाह फिर और बातें नहीं आएंगी दिमाग में। ठीक है, बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा तवज्जो होगी। हालांकि अगर आपके देखिए दो रुकावटें हैं ना, दो अट्रैक्शंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी नमाज़ ख़राब होती है। एक कोई बाहर की हो सकती है और एक आपके अंदर की हो सकती है। जो बाहर की है वो तो आप मे बी आंखें बंद करके उसको दूर करना चाह रहे हैं कि मुझे ना दिखे और मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, लेकिन आंखें बंद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं आपको होगा, इसलिए कि हमारे अपने अंदर जो कुछ है ना वो इतना ज़्यादा है जो हमारे हमें बिज़ी करने के लिए काफ़ी है। वो जो हमारी सोचें हैं वही असल में तो हमें वो करती हैं ना डिस्टर्ब। तो आंखें बंद भी कर लेंगे, अगर आपको बाहर की चीज़ें सताती हैं तो फिर ये करें थोड़ा सा कि मिसाल के तौर पे जिस जगह मसलन आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर टीवी लगा हुआ है, बच्चों का शोर है, ये है वो, तो आप वहाँ उस जगह से हट जाएं। बजाय इसके कि लोगों को हम कहते रहें कि आप चुप कर जाओ मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कभी कभी तो मजबूरी होती है, ऐसी जगह पे ही पढ़नी पड़ती है जहाँ पे सब लोगों की बातें हो रही हैं, वो ऑलमोस्ट तो नामुमकिन है कि आप उनकी बातों पर ना तवज्जो दें और बस नमाज में। इतने तो हम कोई बस वो नहीं है कि हम अपना दिमाग वहाँ से हटा के और इतने ही नमाज में बिजी हो जाएं, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को खुद ही ना आजमाइश में डालें, खुद ही अलग से हो जाएं। अगर शोर शराबा है वहाँ से हंगामे से दूर होके वहाँ पर नमाज पढ़ें, और ये भी देख लें कि आपके सामने अगर दीवार हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि इधर उधर नज़र ना जाए। ठीक है, और असल ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम जो होता है ना वो अंदर का है, मैं जो समझती हूँ। तो इंशाल्लाह वो अंदर के प्रॉब्लम के लिए अपने नफ्स को ज़बरदस्ती नमाज की किरात की तरफ तवज्जो दिलाएं। नमाज शुरू करने से पहले भी ना थोड़ी सी उसकी तैयारी करें। जब हम मुसल्ले पे खड़े हों तो एक तो अव्वल वक्त में कोशिश करें नमाज़ पढ़ने की, उससे भी देखिएगा आपके फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। जितनी जितनी हम डिले करके पढ़ते ना उतना ही फिर ज़रा थोड़ी तवज्जो हटने लगती है। अगर आप अव्वल वक्त में पढ़ते हैं उसके उस वक्त अज़ान होती है, अज़ान जब हो रही है तब नहीं आपने नमाज शुरू करनी, अज़ान का जवाब दें उसके बाद फिर आप, अगर आपने पहले से बावजू हैं मुसल्ले पे खड़े हुए हैं ना, तो अपने दिल को हाजिर करने की खुद कोशिश करें कि आज मैंने नमाज अच्छी पढ़नी है। अपने आपको आखरत की याद दिलाएं, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की सोचें कि इस वक्त अल्लाह ताला मेरे सामने है और जैसे कि मैं हशर के मैदान में खड़ी हुई हूँ और मैं अल्लाह के सामने खड़ी हुई हूँ तो मैं कैसे खड़ी होंगी। ये जो नमाज है ना ये भी आपको हशर के मैदान की प्रैक्टिस करवाती है कि आपने वहाँ पे कैसे खड़े होना, जैसे ये खड़े हुए ना इसी तरह दो कदम होंगे और ना कुछ बोल सकेंगे ना कुछ और कर सकेंगे, बस स्टिल खड़े होंगे। तो हशर के उस मंजर को याद करें भी, अगर इससे भी नहीं ख्याल रात रुक रहे तो फिर समझ लें कि आपको कोई अपनी ख्वाहिश है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान अगर हटा रही है नमाज से उसको छोड़ दें। ठीक है ना, आप रूट कॉज को देखें ना, अगर आपकी बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है तो आपको स्ट्रॉन्ग ही दवा लेनी पड़ेगी ना। अगर आपकी बीमारी आपको खींच रही है तो आप दूसरी तरफ खींचे, इसी उसमें आप कि नमाज ख़त्म हो जाएगी। मतलब इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई बंदा दरख्त के नीचे बैठा हुआ और पूरे कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, इतने में वहाँ से चिड़ियों का शोर आ जाता है, उसको परेशान कर रहा है, उसके हाथ में एक लकड़ी है जिससे वो चिड़ियों को उड़ाता है। अभी वो अपनी चिड़ियों को उड़ा के अपनी सोच वापस लेकर आता ही है कि चिड़ियाँ फिर आ जाती हैं। तो उसको कहा जाता है कि ये सिलसिला तो कभी नहीं ख़त्म होगा, अगर तुम इसे खलासी करना चाहते हो तो दरख्त को ही काट दो। तो यही मिसाल है ये जो ख्यालात आने की है, ख्वाहिशात की, इसकी जब आप देखते हैं कि नई सोचें हट रही, सोचें आपको अपनी तरफ खींचती चली जा रही हैं, सताती चली जा रही हैं, तो उस चीज़ को छोड़ दें जिसकी सोचें आती हैं। और ये ज़्यादातर ये दुनिया की मोहब्बत की वजह से, तो दुनिया की मोहब्बत को पूरी तरह तो आप दिल से नहीं निकाल सकते, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस हद तक भी मुमकिन है इसकी कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें, या अल्लाह मेरी नमाज़ें सही हो जाएं। आज तक अपनी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, मेहमान में हम खुद अपनी नमाज़ों को वेटेज दें तो हम कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में शायद मेरे ख़्याल में आधी से ज़्यादा ही नमाज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई भी रूह है ही नहीं, खुशू है ही नहीं है। तो फिर फिक्र होनी चाहिए ना, फिर दुआ भी मांगनी चाहिए। तो दुआ अल्लाह ताला से ज़रूर मांगे। और तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला की तज़ीम और हैबत ये होनी चाहिए दिल में, और ये दो चीज़ों से आती है कि अल्लाह ताला की जलाल को महसूस करें और अपने आप को बहुत हकीर समझे, हकीर कर लें अल्लाह के आगे, अपनी पहचान करें और अल्लाह की पहचान करें, मैं किसके आगे खड़ी हूँ और मैं खुद क्या चीज़ हूँ, उसमें आप अपना सोच सकते हैं कि मैं किस चीज़ से बनी हुई, गंदे पानी की बूंद से मैं क्या थी, मुझे अल्लाह ने क्या बनाया, मेरा अंजाम क्या होने वाला है, मेरा जिस्म ये मुर्दा हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, लोग इसको फेंक आएंगे गड़े के अंदर, कीड़े इसको वहाँ पे खाएंगे, मैं क्या चीज़ हूँ। इस तरह से करके अपना अंजाम भी याद करें और अपनी हकीकत भी पहचानें। और ये भी याद रखें, कुछ अपने आप को इंसेंटिव देने से भी इंसान का दिल खुश होता है और वो इस तरफ आता है। आप अपने आप को सोचें कि अगर मैंने अच्छी नमाज़ पढ़ी ना, इसका मुझे बड़ा सवाब मिलना है। जैसे आप और कामों में भाग भाग के जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं कि नेकी के कोई काम नहीं यानी छोड़ते, वो बस कोई काम सामने आ जाए ना माशाल्लाह वो इतना भागते हैं अजर लेने के लिए, मुझे इसका अजर मिलेगा, इसकी खिदमत करके अजर मिलेगा, ये काम करके अजर मिलेगा, फलां चीज़ से अजर। तो ये सोचें कि मुझे नमाज़ पे बहुत अजर मिलना है अगर मैंने इसको सही पढ़ लिया तो, ठीक है। हम सिर्फ उसको ऐसे से पढ़ते हैं कि जैसे कि बस एक ड्यूटी है उसको पूरा करना है, इस पे अजर वजर कुछ नहीं है। अजर का सोचें, इससे मेरे गुनाह भी धुल जाएंगे और मुझे बड़ा सवाब मिलना, ठीक है। तो जब अजान हो तो ऐसे समझे जैसे ये कयामत की निदा है, उसकी पुकार है, तो अब मुझे खड़े होना है और मुझे ये देखना है कि मैं किस हाल में अल्लाह के सामने खड़ी हूँ। अपनी बुराइयों को भी याद किया करें, अपने गुनाहों को, और सोचें कि इन गुनाहों को अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता और कोई नहीं है जो अल्लाह से इनको छुपा सके मेरे लिए, कौन छुपा सकता है मेरे लिए इनको अल्लाह से। तो इनका कफारा क्या हो सकता है, शर्मिंदगी, खौफ, हया आनी चाहिए फिर उस वक्त। तो जब किबले की तरफ मुंह करना है तो हर डायरेक्शन से हटा के तभी किबले की तरफ मुंह हो सकता है ना। अगर आपने किसी की तरफ तवज्जो करनी हो तो कैसे हो सकती है, जब तो लोगों से पीठ नहीं फेरेंगे तभी आप उस तरफ खड़े हो सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला की तरफ भी तवज्जो करनी होगी तो उसके लिए क्या होगा कि अल्लाह के सिवा जो भी है उससे तवज्जो हटानी पड़ेगी, सब उस वक्त अजनबी हो जाए, ठीक है। आप ऐसे ही समझे, अगर आप दिल नहीं लगाते तो आप ऐसे समझे, मैंने आपको कहा ना अल्लाह से मुलाकात है, ये समझे कि आप किसी से मुलाकात करने के लिए गए मसलन, या अब वो आपको छोड़ के बिठा के और वो खुद कहीं और चला गया और उसने कहा अच्छा मैं आती हूँ और खुद चली गई और घूमने चली गई, कहीं चली गई, और कभी होता है कि वो वापस आई, कभी होता है कि वापस भी नहीं आई और आप उठ के आ गए, कैसा फील होगा आपको, माइंड करेंगे ना। तो यही बात है, हम अल्लाह की मुलाकात को जाते हैं तो मुसल्ले पे खड़े हुए और उसके बाद क्या किया, अल्लाह हू अकबर कह के कहीं और पहुंच गए, कहीं और घूमने चले गए, सैर करने चले गए और अल्लाह को वहीं छोड़ के। जितनी आप तवज्जो करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपके ऊपर तवज्जो करेंगे। आपने अल्लाह ताला को तो मुसल्ले पे छोड़ दिया और खुद भाग गए, कैसा फील होता है। ये ऐसे ही करना, जब हम सोचों में गुम हो जाते हैं, जो अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये हदीस में जब इंसान इधर उधर वादियों में घूमना शुरू जाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या मुझसे भी बेहतर कोई और है जिसकी तरफ तू तवज्जो कर रहा है, ए बंदे क्या मेरे से भी ज्यादा कोई और अच्छा है। कितनी शर्म की बात है ना कि मैं फलां के बारे में सोच रही हूँ और फलां के बारे में सोच रही हूँ और खाने के बारे में सोच रही हूँ और सैर के बारे में सोच रही हूँ और अब मैंने क्या पहनना है उसके बारे में सोच रही हूँ और अच्छा बच्चों ने होमवर्क किया या नहीं किया इसके बारे में सोच रही हूँ। आप सोचिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मुझसे भी ज़्यादा कोई और अच्छा है जिसकी तरफ तू इस वक्त तवज्जो कर रहा है। अगर दिन भर में आया ही आया मेरे पास, एक वक्त खड़ा हो ही गया, अब ये है कि फिर मुझे छोड़ के फिर कहीं और चल पड़ा, फिर दुनिया ने तुझे खींच दिया, सारा दिन तो दुनिया में ही गुम रहते हो। अगर 3 मिनट के लिए अल्लाह के सामने खड़े हो ही गए तो वो 3 मिनट भी अल्लाह को ना दे पाए कि कम से कम फर्ज नमाज में, हमारी नमाजें होती कितनी लंबी है, कौन सा बुरी बुरी रात हम नमाजों में बड़े खड़े रहते, हार्डली 5-10 मिनट से ज्यादा क्या होती है, वो 5-10 मिनट भी ना तुम जिंदगी के मुझे दे सके तवज्जो के साथ। उसमें भी दुनिया ही याद है, सारा दिन दुनिया और नमाज में खड़े हुए भी दुनिया, हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। अगर अल्लाह ताला हमें कहे कि मेरे से बेहतर किसी और की तरफ चल पड़े, तो जब आप तकबीर कहें तो आपका दिल आपकी जुबान को झूठा ना करे। दिल कैसे झूठा करेगा जुबान को, कि जब आप अल्लाह हू अकबर कहते हैं तो क्या दिल कह रहा होता है अल्लाह हू अकबर, ये ना हो कि दिल किसी और को अकबर कह रहा, जुबान किसी को कह रही है। जब आप कहें इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन तो आपका दिल कह रहा है ना अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। जब आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहें तो वाकई आपका दिल कह रहा है कि मैं अल्लाह से पनाह अल्लाह की पनाह में आ रही हूँ। जब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो आपका दिल इसको समझ रहा है कि वाकई सारी तारीफ मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। जब रहमान और रहीम कहते हैं तो दिल के अंदर आती है, आहिस्ता आहिस्ता कहें ना, आहिस्ता कहेंगे तो आएगी। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है तो आमीन पे पहुंचे में अगर उतनी देर में तो कैसे जहन में लेकर आएंगे। जब रहमान रहीम कहें तो अल्लाह के मेहरबानियाँ उसकी रहमत फील करते हैं, चलो जहन में ना लेकर आएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वाकया ही जहन में लेकर आएं, वाकया जहन में लाते लाते जुबान कहीं और पहुंच जाएगी और दिल कहीं और पहुंचा होगा, वाकया ना जहन में लेकर आएं, सिर्फ अल्लाह की रहमत को महसूस करें, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह की अजमत, अल्लाह तो कितना बड़ा मालिक है, उस दिन का भी मालिक तू होगा। इस तरह से करके पूरी तिलावत कंप्लीट करें एक बात के साथ, फिर इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल करती हूँ। जुरारा बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने नमाज में ही आयत पढ़ी थी, फ़ाइज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर, जब सूर में फूंका जाएगा, तो पता है क्या हुआ था, उनकी वफ़ात हो गई थी, गिर पड़े वहीं पे। क्या वजह हुई, उन्होंने तसव्वुर कर लिया था उस हालत का कि जब सूर में फूंका जाएगा तो हैबत से जान निकल गई। हम पढ़ते ना इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, कितनी दफा हमें हैबत आती है, अलकारियतु मलकारिया वैलुन लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, कितनी दफ़ा हैबत आती है, कितनी दफ़ा दिल कांप जाता है कि मैं तो नहीं इनमें से हूँ, मेरे लिए तो नहीं है बैल है। देखें याद रखें, अगर हम नमाज की रूह को नहीं समझे ना तो उस का जो मकसद है वो भी नहीं पा सकेंगे। क्यों उन लोगों के रंग जर्द हो जाते थे, क्यों उनकी हालत ऐसी हो जाती थी, नमाज को समझते थे वो, इसीलिए उनमें खुदा का खौफ आता था। इसीलिए तो जो कुरान में है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, तभी तो बुराइयों से हमें नहीं रोकती क्योंकि हम हमारी नमाजें ही सही नहीं, तभी तो फिर आप शिकायत करते हैं नमाजियों का क्या फ़ायदा, फलाना तो इतनी नमाजें पढ़ता है और देखो ये करता है। तो हालांकि देखें आप तो जब सजदे में गए तो उस वक़्त ही आपने अपनी जिल्लत का इजहार कर दिया था कि मैं अल्लाह मैं गुलाम बंदी हूँ, अल्लाह मैं तेरे आगे जलील हूँ, गिरी पड़ी हूँ, अल्लाह मैंने अपना माथा अपने सर जो मेरी इज्जत का मकाम है तेरे आगे रख दिया ज़मीन पे, तो या अल्लाह अब इतना आप नीचे जब गिर गए हैं अब बताएं आप अपनी मर्जियां क्या करेंगे फिर, क्या आपकी नमाज ना रोकेगी आपको बुराइयों से? लेकिन क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि सजदा ये है। मैं कितनी जलील हो रही हूं। तो क्या करना है? दिल को हाजिर करना है, कलाम के माने को समझना है, अल्लाह की हैबत को समझना, उसकी ताजीम को समझना। जब आपके दिल में अल्लाह की हैबत आ जाएगी ना, जैसे मसलन आप किसी उस्ताद से जब पढ़ते हैं तो आपके दिल में उनकी इतनी इज्जत हो जाती है, फिर उससे सवाल पूछने से भी आप डरते हैं, ठीक है? फिर आप उनके सामने ज़रा थोड़ा सा रिजर्व होके रहते हैं कि अब आप उनको उस्ताद समझ रहे हैं, अब आपको उनकी वैल्यू आई है। फिर आप उनका नाम भी लेते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं। लेकिन कोई और आता है, आपकी कोई और जानने वाली आती है, वो आती हैं उन्हीं आपकी उस्ताद के सामने बड़े तू तड़ाक से बात करती हैं और ऐसा करती हैं, तो आप कहती हैं हाय ये कैसे बात कर रही है, हम तो नहीं इस तरह बात कर सकते। तो क्या फ़र्क क्या होता है? असल में बात ये होती है कि आपने पहचान लिया मकाम उस्ताद का और उसने नहीं जाना, है ना? आपने समझ लिया, आप जान गए और वो नहीं जानती, ये फर्क हुआ। अब जो अल्लाह की हैबत को समझता है ना, जो अल्लाह ताला को पहचानता है, वो तो उसके सामने खड़े होने से कांपेगा। समझ आ गई ना मेरी बात? आपको इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम अपने असातिज़ाए कराम के सामने इस तरह हो जाते हैं। मतलब मैं तो अपनी ही बात करूँगी कि मतलब इंसान कुछ पूछने से भी इस तरह होता है और एकदम उनके लिए, मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने असातिज़ाए कराम का, हम जब नाम लेते हैं तो इतनी इज्जत से लेते हैं, जब कोई और ले रहा होता है तो ऐसे करके उनका नाम ले लेता है बगैर कुछ आगे पीछे बोले हुए, तो हम उस्ताजा कहते हैं। हम नाम लेने से भी, अनलेस के कोई ज़रूरी हो, नाम लेने से भी वो होते हैं, तो कोई बहुत आराम से ऐसे कह देता है जैसे उसकी कोई साथ वाली लड़की है या कोई और किसी भी औरत का नाम ले, तो हमसे नहीं लिया जाता इस तरह। क्यों? हम उनके मकाम को पहचान गए, है ना? तो जब हम अल्लाह ताला के मकाम को पहचान जाते हैं ना, तो हमसे नहीं होता, फिर हम कांप जाते हैं। कोई जो नहीं पहचानता वो ऐसे ही कोई भी, जैसे अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में सहाबा कराम आपकी मजलिस में सवाल करने से भी झिझकते थे, वो इंतज़ार करते थे कोई बद्दू आए और आके सवाल करे। वो बद्दू आते थे, वो ऐसे ही बोलने शुरू जाते थे, कुछ भी कह देते थे, कोई भी सवाल कर रहे थे, सहाबा कराम नहीं ऐसे कर सकते थे। जब आपको किसी के मकाम का इल्म हो जाता है, आप खुद ब खुद उसके सामने ज़रा मतलब एक, यानी आपके दिल पे उसकी ताज़ीम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप फिर कुछ बोलने से भी, कुछ बेजा बात करने से भी, बेअदबी करने से भी इतना ज़्यादा डरते हैं, इस चीज़ का इतना ख्याल रखते हैं। तो ये आप अल्लाह के मकाम को पहचाने। इसी तरह अज़ान की आवाज़ को इस तरह हमने सोचना जैसे कयामत की आवाज़ है। तो जाहिर है हर टाइम एक जितना खुशू नहीं हो सकता, इन चीज़ों को हमने बार बार दोहराना है, बार बार जहन में लाना है, ताकि हमारी नमाज़ें बेहतर हों। फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा हमें आदत पड़ गई कि हमने ऐसी नमाज़ें पढ़नी है तो फिर हमेशा वैसी ही पढ़ेंगे। अभी हमारी नमाज़ें हमें बुरी तरह पढ़ने की आदत पड़ गई तो हमेशा हम बुरी ही पढ़ते हैं। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह हमारा जो पहला सवाल है, अगर पहला क्वेश्चन ही हमारा जो है उसमें हमारे मार्क्स ख़राब हुए तो फिर आगे क्या होगा? बाकी सवालात के जवाब हम कैसे देंगे? तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, इसी दुआ के साथ हम कंक्लूड करेंगे। और आज की जो दुआ आपको बतानी है वो भी एक तो इस चीज इसके सिलसिले में भी आपको हेल्प करेगी। बहुत मुख्तसर सी दुआ है। रब्बी आइन्नी अला दिक्री का व शुक्री का व हसनी इबादती का। अल्लाह हमारी मदद फरमा। अला दिक्री का अपने ज़िक्र करने में व शुक्री का और अपने शुक्र करने में, अला व हसनी इबादती का और अपनी अच्छी इबादत के में हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह की मदद के बग़ैर नहीं हो सकता। हमने इंशाल्लाह ये अब अभी हम यहाँ से उठेंगे तो इंशाल्लाह हमने ये अज़म करना है कि मैंने अपनी नमाज़ों में खुशू लेकर आना है, और कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हम भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह कर सकते हैं। और अगर आप देखें 100% नहीं भी कर सके, आप मुसलसल अगर स्ट्रगल भी करते रहे ना, जैसे मैंने आपको चिड़ियों को उड़ाने की बात की है, मुसलसल आप स्ट्रगल भी करते रहना, कम से कम हमारा ये तो होगा कि हम सारी ज़िंदगी मुसलसल अपनी नमाज़ों को सही करने की स्ट्रगल करते रहे और इसी में मर गए, वो बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हमने सारी ज़िंदगी बुरी नमाज़ें पढ़ी और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही जाते ही पहला क्वेश्चन जो है ना वो ये होना है कि नमाज़ कैसी थी आपकी। तो पहला क्वेश्चन ही आप उसमें ही कांप गए और उसमें ही घबरा गए तो अगले क्वेश्चंस के जवाब आप कैसे देंगे बताएं। और देखें पहला सवाल आप कॉन्फिडेंटली दे लेते ना और उसमें अच्छे आपके मार्क्स आ जाते तो आप वाइवा वगैरह, आपने अगर प्रैक्टिकल्स और इस तरह में वाइवा साइंस ली थी तो आपको पता होगा जब वो या इंटरव्यू वगैरह में पहला सवाल आपने सही दे दिया तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, फिर थोड़ा सा आपको हौसला भी हो जाता है कि अच्छा ठीक है नहीं मुझे कुछ आता है। और पहले सवाल में ही अगर आप गिर जाते ना तो फिर आगे सारा ही आपका वो कांपते ही रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, मुझे तो पहले पे ही मेरी ये हालत हो गई है। तो ये बार बार दुआ करें, जितनी दफ़ा भी याद आए अल्लाह मेरी नमाज़ें अच्छी कर दे प्लीज़, आज ही के साथ अल्लाह ताला से उठते बैठते अल्लाह ताला से मांगे, इसी तरह मांगते रहें अल्लाह मेरी नमाज़ों को अच्छा कर देना ना, ये ना हो कि मर के यही नमाज़ें लेके चली जाऊँ, अल्लाह पिछली एक माफ़ी दे देना और अगली के अंदर अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाना कि उनको मैं अच्छी तरह से पढ़ सकूँ, मतलब उनमें खुशबू दे देना, एक रकत भी नहीं ज़िंदगी में नसीब हुई कि पूरे खुशबू के साथ हो, एक सजदा नहीं नसीब हुआ कि ऐसा हो कि सिर्फ तेरे आगे झुकी हूँ कोई और ना ख्याल आया हो। हाँ तरावियों की भी पढ़ी नमाज़ें और अल्लाह लैलतुल कदर की भी पढ़ी और अल्लाह नवाफिल भी पढ़े और फ़राइज़ भी पढ़े, सारे ही लूले लंगड़े पढ़ लिए, सारी बीमार नमाज़ें, बीमार नमाजें लेके अल्लाह तेरे सामने कैसे खड़ी होंगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे सब ये दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर अब आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं ना फिर।